السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. الحمد لله ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کا نام، لفظ جلالہ اللہ، اور اس کا صفاتی نام اور رب، ان دونوں کو دیکھا تھا. آج ہم کلمہ طیبہ پہ بات کرتے ہیں جس کی بیس پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس کی گواہی دینے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کا انکار کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ہم کسی اور کو اس کی اولاد نہیں مانتے. صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی بہت وسیع ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ، تو بیسیکلی آپ نے ہر سہارے کو ختم کر دیا کہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق ہے. خالق نے اپنی مخلوق کے ذریعے اپنی پہچان کروائی ہے. جتنا کچھ اس کائنات میں بکھرا ہوا ہے وہ سب اس کی نشانیاں ہیں، مخلوق ہیں، اس کی مصوری ہیں، اس المصور کی، اس کی تخلیق ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پہچانے کہ اس کے سگنیچر ہیں، اور اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب جیسے مرضی رہیں، جو مرضی کریں، مریں یا جئیں، کھائیں یا بھوکے رہیں، بس وہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اور ایک طرف ہو گیا. نہیں، وہ ان کے کاموں کو سنوارنے والا، ان کو قائم رکھنے والا، ان کو ان کی ہر ضرورت پوری کر کے دینے والا. اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ ساری طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی کوئی طاقت نہیں. دوا اللہ کے کرنے سے کام کرتی ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں. پیسہ اللہ کے کرنے سے کام آتا ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں. یہ صرف پردہ اسکرین پر نظر آنے والے پرزے ہیں، وہ ایکٹرز ہیں جو ایکٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ قدرت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کے پیچھے اس کو جان سکے کہ وہ کون ہے جو رزق دیتا ہے. رزق اس پے چیک میں نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے اس کو پہچانے جس نے آپ تک یہ پہنچایا. اسی میں نہ کھو جائے، اس کے پیچھے الرزاق کو پہچان لیں. اسی طرح دوا آپ کھاتے ہیں لیکن دوا کام نہیں کرتی، اس کے پیچھے وہ اشافی ہے، اس کو سمجھ لیں. آپ کوئی کام کرتے ہیں، اپنے قابلیت کے گن نہ گائیں، اس کے پیچھے وہ الوہاب ہے جس نے یہ قابلیت عطا فرمائی. سمندروں میں جو مد و جزر ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتے، اس القادر کی قدرت ہے، ورنہ ان میں طاقت نہیں. ہماری زندگیوں میں بھی جو عروج اور زوال آتا ہے وہ اسی کی طاقت ہے، اسی کے کرنے سے ہے. لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، जितनी भी चीजें हमारी समझ में ये होती हैं कि ये कुछ करती हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऐसे हैं जैसे आपने कोई पुतली देखी हो, उसके पीछे डोर लगी होती है और डोर से उसको उन पपेट्स को हिलाया जाता है, तो जिसके हाथ में डोर है असल तो वही चला रहा है या खुद नहीं चल रहा है। जब ये समझ आ जाए तो जिंदगी की समझ आने लगती है कि ये इत्तेफाकात का जहान नहीं है कि इत्तेफाक से ऐसे हो गया, इत्तेफाक से वो हो गया, एक बहुत बड़े प्लानर की प्लानिंग है, इसको समझने की जरूरत है। तो इस कलमे में जो चीज रुकावट बनती है वो झूठे सहारे हैं जो हमने बना रखे हैं, जिनके साथ हमारे दिल लगे हुए हैं, और हम उन्हीं को सब कुछ समझ के भूल जाते हैं कि इनके पीछे एक रब है। हमारे कारोबार हो, हमारे घर हो, पैसा हो, तरक्की हो, ओहदे हो, इन सब में इस गलत फहमी से निकल आए कि ये कुछ काम बना सकते हैं, इनसे दिल ना लगाएं, इनको हासिल कर सकते हैं, मगर इनमें ना खो जाएं। हम जब ये समझने लगते हैं कि ये कुछ बनाते हैं, ये कुछ संवारते हैं, ये मेरे काम करते हैं, दिल इन्हीं के साथ फिर लगता है। अगर ये महबूब हैं, दिल में इनकी जगह है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कभी दिल में जड़ नहीं पकड़ सकेगा। तो जरूरत क्या है कि हम अपने दिलों में ये यकीन बिठाएं कि मखलूक आजिज है, इनमें कोई पावर नहीं है, पावर सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, मखलूक तो बेबस है। सूरह हदीद के स्टार्ट में आता है ना, वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन, जब कोई भी नहीं था वो अल अव्वल है। तो ये असबाब तो बहुत बाद में बने, उसी ने पैदा किए, क्या वो इनका मोहताज हो जाएगा? क्योंकि बाज लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला भी दुनिया में कोई काम करना चाहे तो सिर्फ उसको सबब की जरूरत होती है, सबब के बगैर तो शायद वो समझते हैं कि कोई काम हो ही नहीं सकता, उसको भी सबब ही इख्तियार करना पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं है। और बेशुमार हमें मिसालें इस सिलसिले में मिलती हैं कि अल्लाह ताला को किसी सबब की जरूरत नहीं है, ना वो फरिश्तों का मोहताज, ना वो अंबिया का मोहताज, ना वो किसी इंसान का मोहताज, ना किसी जिन का मोहताज, वो तो खुद इन सब का खालिक है। हाँ, ये इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने रखे, ताकि पता चले कि कौन इन्हीं को, इन्हीं असबाब को समझ लेता कि सब कुछ यही है। इसलिए दिल से इनको निकालें, ये कुछ नहीं, अल्लाह ताला ही सब कुछ है, और वो दिलों को ही तो देखता है कि दिल में क्या है, दिल में किसकी अजमत है, किसकी बड़ाई है, किसकी मोहब्बत है। हम नमाज पढ़ने लगते हैं, अल्लाह हू अकबर कहते हैं, लेकिन हमारे दिलों में भी क्या वो अकबर है? अजान होती है, 4 दफा पहले अल्लाह हू अकबर कहा जाता है, फिर आगे शहादत दी जाती है अल्लाह ताला के इलाह होने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की, इसलिए कि पहले उसको अकबर जानोगे तो शहादत भी दिल में आएगी। और इसके लिए अगर हम अल्लाह ताला के एक नाम को समझ जाएं और उसका यकीन दिल में बिठा लें ना, तो ये जो जितने सहारे और जितने असबाब और ये जितने जरिए हैं, सोर्सेज हैं, मीन्स हैं, इनके ऊपर हमारा भरोसा खत्म हो सकता है। और वो अल्लाह ताला का कौन सा नाम है? अल-क़ादिर, जो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसको कोई चीज आजिज नहीं कर सकती, बेबस नहीं कर सकती। वल्लाहु आला कुल्ली शैइन क़दीर, यानी कुल्ली शैइन है, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, हर चीज पर वो कादिर है, कोई हदबंदी नहीं है कि वो ये नहीं कर सकता बाकी सब काम कर सकता। इंसान की तो एक लिमिट है ना, उसकी ताकत की लिमिट है, उसके कंट्रोल की लिमिट है, उसकी जोर की लिमिट है, जिससे आगे नहीं वो जा सकता, कर अल्लाह ताला के आगे कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो कादिर है कि वो इज्जत दे, वो कादिर है कि वो उरूज दे, वो कादिर है कि वो रिस्क दे, वो कादिर है कि वो शिफा दे, वो कादिर है कि वो दुख दूर करे, वो कादिर है कि वो दिन निकाल दे, वो कादिर है कि वो इंतकाम ले ले। तो कादिर को जब लाओगे तो उसके तमाम अस्माए हुस्ना उसके साथ फिट हो सकते, कि वो अर्रज़ाक है तो वो कादिर है कि रिस्क दे, वो अलहादी है तो वो कादिर है कि हिदायत दे, वो अर्रहमान है तो वो कादिर है कि वो रहम करे, वो अत्तवाब है तो वो कादिर है कि तौबा कबूल करे। कोई चीज़ भी उसको लिमिट नहीं कर सकती, वो तमाम ताकतों का मालिक है। तो इस यकीन को बिठाएं दिल में, इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप ये कह देते ना, हाँ अल्लाह ताला कादिर तो है लेकिन, हाँ अल्लाह ताला कादिर तो है मगर, तो यहां आकर ही अकीदा बिगड़ता है। लेकिन और अगर कुछ नहीं है, इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, बस वो अल कादिर है। वो अल कादिर है, इसीलिए तो हजरत मरियम को बेमौसमी फल उनके हुजरे में पहुंचा दिए। अलकादिर है तो तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जकरिया अलैहिस्सलाम इनको बुढ़ापे में बांझ बीवियों के साथ औलाद दे दी। वो अलकादिर है तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से कैसे निजात दे दी। वो अलकादिर है तभी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आजाद कर दिया। तो जो लोग समझते हैं कि उसको किसी सबब की जरूरत है, उसके बगैर वो भी काम नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ये अकीदा दिल से निकाल दे, उसको किसी सबब की जरूरत नहीं और उसको किसी की भी जरूरत नहीं। इन तमाम मिसालों में उसने किसी का भी सहारा नहीं लिया, उसको किसी सहारे की जरूरत ना, उसको अर्श की जरूरत, ना कुर्सी की, ना आसमान की, ना जमीन की, ना कि कोई कारिंदों की कि जो उसके काम करें। वो बगैर सबब के दे सकता है, सबब का पैदा करने वाला वो खुद है। इसलिए कि वो असमद है, समद उसको कहते हैं सारों को उसकी जरूरत हो और उसको किसी की भी जरूरत ना हो। वो हर एक के काम बनाने वाला है, उसको किसी जरिए की जरूरत नहीं, किसी काम को बनाने के लिए कोई मीन्स नहीं चाहिए। और शैतान हमारे दिलों में डालता है कि कुछ नहीं हो सकता अगर तुम्हारे पास माल ना हो, कुछ नहीं हो सकता अगर तुम्हारे पास ओहदा ना हो, आजकल तो बस पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ गया? कहते पैसे और कॉन्टेक्ट्स के बगैर कुछ नहीं चलता यहाँ। हालांकि अल्लाह ताला ने ये असबाब इसीलिए तो बनाए थे ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो। पैसे को हम बुरा नहीं कह सकते, एक बंदे के पास मिलियंस हो सकते मगर दिल में अगर उसके 1 डॉलर की भी मोहब्बत नहीं है तो वो पास हो गया। और इस किसी के पास चंद हजार हो सकते मगर दिल में ये कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता मेरे तो सारे ही मसले हल हो जाते, ये फेल हो गया। इसलिए किसका भरोसा, पैसे भी हो गया। अब ये नहीं कि हम असबाब अख्तियार ना करें मगर हमें समझना है कि इन असबाब की जगह कहाँ है, ये किस लिए पैदा किए गए हैं। हम असबाब को छोड़ेंगे नहीं मगर हम उन पर भरोसा नहीं करते कि ये हैं तो काम होता है, आज ये ना हो तो काम ना हो। असबाब के पर्दे के पीछे अल्लाह ताला की कुदरत को पहचान लें और दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़े हों, इन असबाब के साथ नहीं। वो होगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, वो होगा तो मेरे काम बनेंगे, डॉक्टर होगा तो मुझे शिफा मिलेगी। कोई सबब इज्जत नहीं देता इल्लल्लाह, कोई सबब शिफा नहीं देता इल्लल्लाह, कोई सबब रिस्क नहीं देता इल्लल्लाह, कोई सबब तरक्की नहीं देता इल्लल्लाह, कोई सबब हाजतें पूरी नहीं करता इल्लल्लाह, कोई सबब मुश्किलें दूर नहीं करता इल्लल्लाह। यही तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ला इलाहा है फिर उसके बाद हर एक चीज के साथ लगा दे इल्लल्लाह। कोई खुशियां नहीं देता इल्लल्लाह, कोई काम नहीं संवार सकता इल्लल्लाह। तो इसको समझें और इसके ऊपर फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जब असबाब को ही सब कुछ समझ लेते हैं तो हम इन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, इन्हीं से मोहब्बत करने लगते हैं, इन्हीं को दिल में जगह दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब अल्लाह ताला की क्या जरूरत, असल तो असबाब ही हैं। असबाब भी जब इख्तियार करें तब भी पहले अल्लाह ताला की तरफ जाएं। एक रिवायत आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा बीमार हो गए तो अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह मैं बीमार हूं। फरमाया जाओ वो जड़ी बूटी वहां पे है उसको खा लो, शिफा हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए और खा ली, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। अगली दफा जब मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो उन्होंने क्या किया, खुद ही उस जड़ी बूटी के पास चले गए और उसको खा लिया। इस दफा शिफा नहीं मिली तो अल्लाह ताला के पास आए, पूछा या अल्लाह ये क्या, पहले तो शिफा इसे मिल गई थी अब मिली नहीं। फरमाया पहली दफा जब तुम बीमार हुए तो पहले मेरे पास आए और मैंने शिफा दी इस जड़ी बूटी के जरिए, और दूसरी दफा जब तुम बीमार हुए तो सीधे उस जड़ी बूटी के पास चले गए, तो मैंने तुम्हें उसी के हवाले कर दिया। इससे पता चला सबब कुछ नहीं है अल्लाह के बगैर। अगर आप समझते हैं कि सबब हमारे लिए कुछ कर सकता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, वो चाहे तो इसी सबब के जरिए शिफा दे दे। इसीलिए तो एक दवा है वो दो लोग खाते हैं, एक ने खाई उसको शिफा हो गई, दूसरे ने खाई तो वो बीमार ही रहा। अगर दवा में ही शिफा होती तो फिर तो सारे ही ठीक हो जाते। तो दिल का किबला सही करें, दिल का किबला अल्लाह ताला की तरफ करें। मक्की दौर में 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो सिखाया, अल्लाह ताला की अजमत, ईमान की मजबूती। भूख मिटानी है तो खाना भूख मिटाता है या अल्लाह ताला? हम कहते हैं खाना मिटाता है, हालांकि अल्लाह ताला भूख मिटाता है, खाने को जरिया बनाया। प्यास कौन बुझाता है, पानी या अल्लाह ताला? हम पानी पीते हैं सोचते हैं प्यास बुझ गई, अल्लाह ताला पानी प्यास बुझाता है, पानी को जरिया बनाया। फिर अल्लाहु अकबर, इज्जत कौन देता है, शिफा कौन देता है, मसले कौन हल करता है? जब भी कोई मसला हो जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह ताला को पुकारे। किसी इंसान के मदद आप हासिल कर सकते हैं मगर पहले अल्लाह ताला की तरफ जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, फैजा मरितु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं वो मुझे शिफा देता है। तो शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में, इसलिए इस अकीदे को मजबूत करने के लिए मेहनत करें और देखा करें कि जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती है मैं किधर को दौड़ती हूँ, किस तरफ मुझे नजर आता है होप और किस तरफ मेरी नजरें लग जाती हैं। नजरें इस दुनिया में ये जो नजर देखती है ना, इसी को तो बदलना है। कि नजर में तो लगता है कि ये हैं चीजें जो सब काम करती हैं, कलमा तैयबा नजर ही को तो बदल देता है कि नहीं नहीं ये नहीं करती अल्लाह करता है। नजर को मैं तो लगता है कि पैसा करता है, जॉब करती है, कारोबार करता है, बच्चे सहारा है, नजर में तो ये लगता है, मगर इन्हीं को तो बदलना है। हाँ, अब हम इसकी इंशाल्लाह इस रमजान में प्रैक्टिस करें। अगर हमने इन्हीं को दिलों में जगह दी भी है और इन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं तो असल में हमारे ये बुत हैं जो हमारे दिलों में जगह पकड़ गए, और जहां पर ये बुत आ गए अब हम कलमा तैयबा कितना भी विर्द करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने तो कहीं और ही इलाह बनाए हुए और कई कई बनाए हुए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को यही तो सिखाया था, जब आसा का पूछा कि ये मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, और मैं ये मेरा आसा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ, टेक लगाता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया इसको फेंक दो, वो सांप बन गया, अब फरमाया इसको उठा दो। क्या सिखाया कि असल ये नहीं है, नफा और नुकसान तो अल्लाह ताला के हाथ में, नफा आसा से नहीं मिलता, अल्लाह ताला नफा देना चाहे तो इसी से दे देगा, वरना यही सांप बन जाता है। तो भरोसा अल्लाह ताला पे होना चाहिए, चीजों पे नहीं, यकीन अल्लाह ताला पे रखो, मखलूक पे नहीं, यही ईमान है, यही कलमाए तैयबा है, यही तौहीद है। अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का ईमान अता फरमाए और इसकी मजबूती अता फरमाए, कि हमारे दिलों में कोई और बुत ना हो और हमारे दिल अल्लाह ताला की ही याद और उसी के ऊपर भरोसे के साथ हो। अब मैं आपको आज का जिक्र बताऊंगी, और जिक्र मैं अब आपको वो बताया करूंगी कि जो आप करें तो वैसे भी आप उन अस्कार को करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप इन अस्कार को दुआ से पहले जरूर करें, क्योंकि जब इंसान ये कलिमात कहता है तो क्या होता है कि इन कलिमात में अल्लाह ताला की हम्दो सना है, और जब हम्दो सना के साथ दुआ की जाए तो अल्लाह ताला को अपनी हम्दो सना बहुत पसंद है, वो उससे खुश होता है, जब वो खुश होगा तो अता करेगा। और जब आप हम्दो सना के बगैर ही सिर्फ ऐसे ही दुआ मांगना शुरू कर दें तो दुआ मुअल्लक रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी फिर। अब हमने क्या सीखा हुआ, अव्वल आखिर दुरूशरी कितनी दफा पढ़ के बस दुआ कर लो, दुरूशरी जरूर पढ़ें, लेकिन दुरूशरी पढ़ने से पहले आप अल्लाह ताला की हम्द बयान करें, आप अल्लाह ताला का जिक्र करें, जो मसनून अस्कार हैं वो इसमें आपको हेल्प करेंगे, और इसी तरह आप जो कुरानी जो कलिमात हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं आयात जिनमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है, वो भी आप पहले पढ़ सकते हैं दुआ करने से। तो आज का जो जिक्र है ये वो मसनून जिक्र है जो आप दुरूद शरीफ से भी पहले करेंगे, और बाकी भी जो अज़कार है क्या है, रब्बना लकल हम्दु। अच्छा अब ये देखें, यही कलिमात हम इस तरह से जब हम रुकू से उठते हैं तब भी पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये भी हम बोलते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाला भी जिक्र करते थे जब रुकू के बाद उठते थे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर आगे ये वाले कलिमात भी बोलते थे, और ये दुआ से भी पहले आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, रुकू से उठने के बाद भी कर सकते हैं अगर आप याद कर लें इनको, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। रब्बना लकल हम्दु, ए हमारे रब तेरे लिए ही है सारी हम्द, सारी कैसे आया, अल के वजह से, कि सारी की सारी तारीफ और शुक्र तेरा ही है। कितना कितना हम अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, मिल उस समावाती वल अर्द, मिल जो भराओ है, जो जिसे भर जाए सातों आसमान और जमीन भी, आसमान अब कितने हैं, सात आसमान है, तो ये सातों भर जाए, यानी जो इनके दरमियान खला है, कितना खला है, कितना फासला है, देखिए आप एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल की मसाफत का फासला है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, दूसरे से तीसरे के दरमियान, तीसरे से चौथे के दरमियान, तो पहले से लेके सातवें आसमान तक जितना फासला है, जितना खला है, वो सारा भर जाए, मैं इतनी तेरी तारीफ बयान करता हूं, अल्लाहु अकबर, सारी तारीफ सिर्फ तेरे लिए है, इस क्यों, इसलिए कि तू ही हर कमाल का मालिक है, सारे तेरे अफ़आल, तेरे अस्माओ सिफात, तेरे तेरी जात, ये सारी तारीफ के काबिल है, और इसमें कोई शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी है, ये अलहम्द सारी की सारी तेरी है, किसी और की नहीं, और कितनी तारीफ जो भर दे आसमानों को, और कितना बड़ा फासला है पहले आसमान से लेके सातवें आसमान तक। वल अर्द, और जमीन और आसमान से जमीन के दरमियान भी 500 साल का फासला है। तो कितनी ज्यादा मैं तेरी हमद बयान करता हूं कि जितना खला है, जितना फासला है आसमानों के दरमियान और जमीन और आसमान के दरमियान, अल्लाह मैं तेरी इतनी हमद बयान करता हूं। अल्लाह हु अकबर, ये कितनी ज्यादा हमद हो गई। और इसके अलावा फिर आगे व मिल उमा शिता मिन शे इम्बादु, और इतनी कि जिससे भर जाए हर वो चीज जो तू चाहे। इसके बाद जो चीज भी है वो अब मुझे तो नहीं है अल्लाह पता, मुझे मेरी तो अकल इतनी है आसमान और जमीन, इतनी मुझे तो इल्म है, यहां तक ही है मेरे इल्म की हद। इसके अलावा जो कुछ तेरे इल्म में है तू जानता है हर चीज, वो भी भर जाए जो इनके अलावा है। देखिए आसमान और जमीन के दरमियान की, और आसमान और जमीन भर गए तो फिर बताएं और क्या रह गया। अब इसके बाद फिर हम कहते हैं अल्लाह जो तुझे पता होगा, जो भी तेरे इल्म में है, जो तू जानता है हर वो चीज भी भर जाए। सुबहान अल्लाह, अहलु सना इवल मजद, ए अल्लाह तारीफ और बुजुर्गी के लायक तो तू ही है। अल्लाहु अकबर, अहक्कु मा कौल अल अब्द, सबसे सच्ची बात जो बंदे ने कही वो यही है, सबसे हक बात यही है जो कोई बंदा कह सकता है। जितनी बातें मैंने कही उनमें सबसे सच्ची बात यही है। अल्लाहु अकबर, कि तू ही सारी तारीफ के लायक है और तेरी शान बुलंद है, तू बुजुर्गी वाला, ये सबसे सच्ची बात है। और फिर आगे वा कुल्लुना लक अब्दुन, और हम सब तेरे बंदे हैं, यानी तू हमारा रब है अल्लाह, हम तो तेरे बंदे ही हैं ना। और बंदे होने में आजी है, बहुत मोहताजी है, बहुत अपने आप को गिरा देना है, बहुत किसी के आगे जिल्लत है, ये इसका इजहार है कि मैं तो कुछ भी नहीं है अल्लाह, मैं तो तेरे गुलाम, हम सब तेरे गुलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, ए अल्लाह जिसको तू अता करे उसको से कोई रोक नहीं सकता, तू जितना चाहे अता करे, जिसको चाहे अता करे, जिस वक्त चाहे अता करे, कोई रोक नहीं सकता। वला माती अलीमा मना, और ना ही कोई दे सकता है उसको जिससे तू रोक ले। अल्लाह अकबर, जिसको तू ना देना चाहे। वला यंफाउजल जद्दी मिन कल जद, और किसी शान वाले को उसकी कोई शान काम नहीं आ सकती तेरे आगे, कि किसी को कोई कोई उसकी बड़ाई नफा नहीं दे सकती तेरे सामने। अल्लाह अकबर, तो ये बहुत प्यारी अल्लाह ताला की शान बयान हुई इसके अंदर, और बहुत प्यारा अल्लाह ताला का जिक्र हुआ इसके अंदर। तो इसके साथ फिर हम इंशाअल्लाह ताला जब हम ये कलिमात कहें, उसके बाद आप बेशक दरूद शरीफ पढ़िए, तो फिर आप दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे तो आप देखें कि सुभान अल्लाह, आपने अल्लाह ताला का बहुत जिक्र किया, ऐसा प्यारा जिक्र किया, ऐसी प्यारी हमद की अल्लाह ताला की। उसके बाद जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फिर वो दरूद शरीफ भी ऊपर जाता है, और दरूद शरीफ तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही होता है। उसके बाद फिर आप दुआ भी मांगिए तो अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमाएगा। और दरूद शरीफ के अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे होते हैं, और इसकी तलकीन अल्लाह ताला ने खुद फरमा दी है कुरान करीम में कि आप भी ए मोमिनो, आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजो। और जुमे का दिन तो खास तौर पे दुरूद भेजने के लिए खास कर लिया करें, कि कोई भी जिक्र आपने करना दुरूद सबसे मुकद्दम होना चाहिए जुमे के दिन, खास तौर पे जब आप ऐसे औकात हैं जो इसके अंदर आप दुआ करना चाहें, तो उनमें दुरूद शरीफ को अव्वलीन जगह दे। पहले ये जिक्र करें अल्लाह ताला की हम्दो सना का, और भी अस्कार करें, फिर दरूद शरीफ को पहले लेकर आए, अपनी हाजत को पहले ना लाएं। फिर आप देखेंगे कि अब इस सीक्वेंस के साथ जब आप चलेंगे तो तो फिर आपकी दुआएं भी कबूल होगी। बाज दफा हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, क्योंकि हमें तरीका नहीं आता कि किस तरह से हमने दुआ मांगनी है, क्या तरीका कार होता है दुआ मांगने का। अब इस जिक्र के अंदर अपनी कितनी आजी दिखाई गई है। उसके बाद अब वो आपने दुआ मांगी है, असल में दुरूद शरीफ दुआ है, आपने वो दुआ मांगी जो अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेड ही है। तो जब इसीलिए उलमा कहते हैं आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दुरूद शरीफ ने तो एक्सेप्ट होना ही है, कबूल होना ही है, बीच में आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो इसलिए जब आप रोज़ा इफ्तार करने लगें तो कोशिश करें कि आप इस तरह से अपने दुआओं का सीक्वेंस रखें। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।